ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम इस भागवतम सत्र में श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के आठवें अध्याय के 54वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणाने देवस्य कुर्यात् दर्वमयिं बुधः सपर्यां विविधैर् द्रव्यैर् देशकाल विभागवित्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणा मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्दर्व्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देशकाल विभागवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्दर्वमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर् देशकाल विभागवित्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्या विविधैर्द्रव्यैर् देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण। ओम हे भगवान्। नमः नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव को। मंत्रेण मंत्र से, अनेन इस, देवस्य भगवान का, कुर्यात् करना चाहिए, द्रव्यमयीं भौतिक, बुधः विद्वान, सपर्याम वेदोक्त विधि से पूजा, विविधैः अनेक प्रकार की, द्रव्यै सामग्री से, देश स्थान के अनुसार, काल समय, विभागवित विभागों को जानने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु ये सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं और असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य काफ़ी लंबा है, संक्षिप्त में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और ये प्रणव अर्थात ओंकार से आरंभ होता है। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चार नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे, उन्होंने नारद मुनि को समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए है। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र तथा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले वो निम्न योनि का क्यों न हो, यदि वो ठीक से ही केवल पूजा ही करे तो वो उच्च पद को प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हम यही तक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। बहुत पवित्र मौसम है, अभी कुछ ही दिन में चतुर्मास का आरंभ होने वाला है। अभी परसों श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है, ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा, आज पानीहाटी उत्सव है, परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे निर्जला एकादशी का उपवास था। सो नाइस, सच अ प्यूरिफाइंग एक्सपीरियंस। तो ये सब हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है हर चीज़, ताकि भारत में किसी को डिप्रेशन ना आ जाए। क्योंकि डिप्रेशन क्यों आता है, कुछ करने के लिए है ही नहीं तो क्या करें, देयर इज नथिंग टू डू एक्चुअली, रूटीन वर्क। क्योंकि भारतवर्ष में एक उत्सव समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरे उत्सव की तैयारी शुरू होती है। मन को समय कहाँ है लोनली फील करने के लिए। तो ये हमारा भाग्य है, इस भाग्य को हमको हमेशा सराहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मंत्र हम रोज सुबह जपते हैं भागवतम क्लास के पहले, उसी का श्लोक दिया गया है। आगे लिखा गया है कि ये मंत्र का उच्चारण करने से 12 या 9 दिन में सिद्ध लोगों के जनों का दर्शन होता है। सिद्ध लोग जो जहाँ पर जन्मता ही सिद्धि होती, जैसे बंदर होता है ना, बंदर वो जन्मता ही गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट चैंपियन होता है ना, बाय बर्थ। तो वैसे ही सिद्ध लोक में तो जन्म लेते हैं, यहाँ से पुण्य वुण्य करके वो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, मतलब उनको सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, हर प्रकार की लघिमा महिमा अनिमा प्राप्ति। तो वो लोग आकाश में विचरण करते हुए नजर आते हैं, ऐसे नारद मुनि कह रहे हैं कि जो इस मंत्र को 9 दिन तक विधिपूर्वक जप करते हैं। लेकिन मुझे गारंटी नहीं है कि हम सब लोगों को दर्शन होगा, क्योंकि ये नारद मुनि जी ध्रुव जी को उपदेश कर रहे हैं, और ध्रुव जी एक शुद्धि के एक बहुत सुंदर स्थिति में है। वो उनके निश्चय की वजह से, जिस तरह से उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भगवान चाहिए ही चाहिए, मुझे वो लोग प्राप्त होना चाहिए जो मुझे नहीं मिला है, मतलब मुझे मेरे पिताजी के गोद से निकाल दिया गया, तब मुझे वैसा लोग चाहिए जिस पर मुझे कोई उतरने के लिए नहीं कहेगा, ध्रुव लोक, यानी कि ध्रुव का मतलब है फर्म, ध्रुवता यानी मजबूती, हाँ स्ट्रांग बेस, जो ऐसी जगह चाहिए जहां पर मुझे कोई निकालने के लिए उतरने के लिए नहीं कहेगा। उसके वजह से, उस निश्चय की वजह से उन्होंने नारद मुनि को आकर्षित किया। पहले तो वो तो ऐसे प्लान नहीं था कि नारद मुनि आने वाले हैं, उनका निश्चय और त्याग देखते हुए, टेनेसिटी है ना वो, चिकट, यानी कि इतना दृढ़ निश्चय थे वो कि चाहे कुछ भी हो जाए आई डोंट केयर, वो भाव ही नारद मुनि को आकर्षित किया। फिर नारद मुनि ने परीक्षा किया उनका, उसमें वो पास हो गए और फिर उनको अभी ये उपदेश प्राप्त हो रहा है। तो कुछ योग्यता है, योग्यता बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे में दीक्षा होती है तो सबको इच्छा होती है कि दीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसमें योग्यता भी होनी चाहिए ना, कई साल तक उसके लिए निश्चय होना चाहिए, उस निश्चय के अनुसार तैयारी होनी चाहिए, और फिर वैष्णव जन आपसे प्रसन्न होने चाहिए, आपके प्रयास से जो जो आप कर रहे हैं उससे, फिर आपका सिफारिश होगी, फिर उसको अप्रूव किया जाएगा, फिर उसके बाद में बहुत दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है, वो भी आपकी एक परीक्षा है, उसमें ही वो कई अयोग्य व्यक्ति गल जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, अरे क्या इतना सर, चलो गुरु बदली कर देते, वी कांट वेट सो लॉन्ग। वो एक परीक्षा है संयम, कि इस जीवन के अंत में भी दीक्षा नहीं होगी तो चलेगा, बट हमने तो हमारी तरफ से तैयारी कर ली है और हमने गुरु जी के चरणों के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ये हमारे भक्तों का भाव होना चाहिए। कैसा नहीं कि मैंने अभी 3 साल जब किया, मैंने सब फॉलो किया, काउंसिल मीटिंग अटेंड किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर सेवा भी किया, सारा मेरा लिस्ट कंप्लीट है, टिक मार्क हो गया ऑलरेडी अप्रूव्ड, दीक्षा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दीक्षा और गुरु का संबंध जो है, हमारा और गुरु जी का दीक्षा के माध्यम से जो संबंध है, एक दिव्य क्रिया है, वो किसी भौतिक स्थिति पर आधारित नहीं है, भौतिक देश काल पात्र पर आधारित नहीं है, वो 6 महीने हो गए, 3 साल हो गए, अप्रूव होके 11 महीने हो गए, इस पर डिपेंड नहीं होता है। वो जब भगवान की दिव्य इच्छा होती है तभी जाकर ये अनुग्रह कहते हैं उसको, अनुग्रह शिष्य पर हो जाता है। हमारे यहाँ पर कुछ लोग 17 साल रुके हुए हैं 16 माला करते हुए, कुछ लोग ऐसे थे कि कुछ भी हो जाए वी विल वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, वी विल वेट। तो ये दीक्षा का भाव है। दीक्षा कोई ऐसा मार्केट की वस्तु नहीं कि हमने जेब में पैसा इकट्ठा कर लिया उस वस्तु के मूल्य के अनुसार और अभी यहाँ से टैक्सी करके मॉल में पहुँच भी गए हैं तो तुरंत मिलना चाहिए, हमने पैसे दिए हैं। वैसे ही भौतिक दृष्टि से हम दीक्षा की घटना को नहीं देख सकते। दीक्षा ये बहुत ही दिव्य प्रसंग है जो एक आत्मा और एक गुरुदेव और परमात्मा इनके कृपा से संपन्न होता है। कोई नया नाम मिलने से हमारा कोई इज्जत या हमारी कोई प्रेस्टीज बढ़ नहीं जाती है। उसके अंदर ये जो नाम होता है ना, जैसे कि सुंदर माधव दास, तो सुंदर माधव को महत्व है क्योंकि भगवान का नाम है, लेकिन सुंदर माधव से अधिक करोड़ों गुना महत्व है उस दास शब्द को जो उसके बाद में आता है। और वो दास्यता को अगर हम समझते हैं तो हमारी दीक्षा सफल है। ये दास्यता के भाव जो है गुरु जी के प्रति, गुरु जी के प्रति साख्य और बाकी भाव नहीं हो सकते, एक ही भाव है दास्य। कई बार हमने हमारे पहले पहले दिनों में लोगों ने प्रश्न पूछा था कि एज वी हैव मेनी रसास विद कृष्णा, कैन वी हैव सो मेनी रसास विद गुरु? नहीं हो सकता ऐसा। जब गुरु जी से दास्यता का प्रमाण देंगे तो भगवान से फिर कोई रसों का प्रकट हो सकता है, प्राकट्य हो सकता है। ये बहुत दूर की बातें हैं, प्राथमिक बातें तो ये है कि हमें दास बनना सीखना चाहिए। गुरु महाराज हमको ये पदवी देते हैं, दुनिया में ऐसी कोई पदवी नहीं है जो इस पदवी के मुकाबले खड़ी रही है, बाकी सारी पदवियाँ इस दास पदवी के सामने फेल है। जो व्यक्ति वास्तव में दास होता है वो स्वामी के मन की मर्जी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सही में दास बनता है वो स्वामी को प्यारा हो जाता है, और एक बार वो स्वामी को प्यारा हो जाता है तो भगवान की अनन्य कृपा उस व्यक्ति पर वर्षाव करती है। जैसे कि समझो अभी प्रधानमंत्री का कोई पीए है और वो असेंबली में आता है, संसद में, वहाँ पर 488 लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से चुने हुए बड़े अधिकारी लोग, कुछ मंत्री भी है उसके अंदर, और वो प्रधानमंत्री का एक चिट पड़ता है वहाँ पर, ये सभा तुरंत बर्खास्त की जाए, तुरंत सभा बर्खास्त हो जाती है, क्योंकि वो होगा कोई मिस्टर सो एंड सो, लेकिन वो प्रधानमंत्री का पीए है, इज एम्पावर्ड। उसी प्रकार से जब हम दास बन जाते हैं तो हमें शक्ति आवेश हो जाता है हमारे अंदर, वी बिकम एम्पावर्ड नॉट टू रूल पीपल। हाँ, दो लोगों के ऊपर राज करने के लिए नहीं, भगवान का दिल जीतने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हम शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान की सेवा करना कोई आसान बात नहीं है, सबको नहीं मिलती है वो। तो जो गुरु जी का सही दास बनता है वो इस भाग्य को प्राप्त करता है, भगवान की सेवा करने का और भगवान से अधिक वैष्णवों की सेवा करने का। ये हमारा परम भाग्य है। अगर हम दीक्षित हैं या दीक्षा के लिए इच्छा करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, दोनों लोग भाग्यवान हैं। दीक्षा प्राप्त हुए अधिक भाग्यवान और दीक्षा नहीं प्राप्त हुए कम भाग्यवान, ऐसा नहीं है। दिव्य स्तर पर यह हृदय की बात है। अगर हृदय हमारा उस भाव में है तो दीक्षित व्यक्ति और अदीक्षित व्यक्ति दोनों एक समान लेवल पर हैं। और दीक्षित व्यक्ति अगर समझता है कि मैं कुछ बड़ा पद प्राप्त कर चुका हूँ, मैं 15 साल पहले आपसे दीक्षा प्राप्त कर चुका हूँ, ऐसा अगर सोचता है तो थोड़ा गड़बड़ है उसके अंदर। अल्टीमेटली दीक्षा और ये दास्य भाव, ये हृदय की बात है, आत्मा की बात है, और उसी स्तर पर हमको उनको समझना चाहिए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दीक्षा के योग्य हो जाता है तो दीक्षा उसको प्राप्त हो जाती है, और अगर बहुत देर लग रही है तो दुख करने की कोई बात नहीं है। ये कोई भौतिक कंपटीशन नहीं है। बार बार हम दोहराते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का संबंध का एक घटना है, और ये दिव्य स्तर पर ही होता है। इसका कैलकुलेशन कैसा है ये भगवान जानते हैं कि इसको कब अनुग्रह करना है। हमारे अस्पताल में एक लड़का एडमिट हुआ, और वो बचपन में जब छोटा सा था बालक, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज की गोद में आकर एक बार बैठा था राधा गोपीनाथ मंदिर में, बहुत बचपन की बात है। उसके बाद में अपना जीवन जीते जीते बड़ा हो गया, जवान हो गया, माता पिता अपंग हो गए, और 23-24 साल का हो गया, तो वो उसके ऊपर ही परिवार पूरा निर्भर रहा। और अचानक पता चला कि उसको जानलेवा कैंसर हो गया है। अच्छा है, मैं बताता हूँ कथा आपको, ये बहुत सुंदर कथा है। तो वो भक्ति वेदांत में एडमिट हो गया, और जब तो कर रहा था और जब करने लगा, तो बार बार हमारी स्पिरिचुअल केयर काउंसलर्स को बताता था कि मुझे ना दीक्षा लेना है। तभी तो सोरामाला पूरी भी नहीं करता था। तो अभी क्या बोले, हम भी मंदिर के द्वारा हमको सब बताया गया है क्या क्या नियम है उसके, हमको ऐसा नहीं कि हम किसी को भी सिफारिश कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हर बार उनको मिलते थे तो बोलते थे दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, आई वॉन्ट दीक्षा। तो हम आके अपने डिपार्टमेंट में चर्चा करते, प्रभु क्या कर रहे हैं अभी, वो दीक्षा इतना सीरियसली मांग रहा है, उसकी मौत उसके कुछ ही महीनों में है, उसकी मौत होने वाली है, क्या करें। तो हम लोग ऐसा सोचा कि चुपचाप रहो, कुछ बोलो मत, मीनिंग हाँ बोले तो समस्या है, मंदिर में से डांट मिलेगी, हाउ यू रिकमेंड सच पीपल जो नियम पूरा नहीं हो रहा है, और ना बोलेंगे तो उसको दुख है, तो क्या करें। थोड़ा सा सुनते थे और चले जाते थे। एक दिन की घटना है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जी को पूना जाना था, और राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में है, दादर में एक भक्त बीमार था, तो वो बोले कि मैं पूना जाऊंगा लेकिन दादर में वो व्यक्ति को मिलके जाऊंगा। दादर में उतरे, उस व्यक्ति को मिले, व्यक्ति को मिलके बाहर आए, और उस समय यमुना माता जी, हाँ हर ग्रेस यमुना माता जी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी 3.5 महीने के लिए, परम भाग्य की बात। तो वो अचानक आए, बोले कि नहीं मुझे भी यमुना माता जी को मिलके पूना जाना है। ठीक है, ड्राइवर फिर लेके उनको यमुना माता जी को मिलने के लिए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लेके आया। किसी को खबर नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं। सडनली महाराज आए, सीधे आके लिफ्ट के सामने खड़े हो गए, तब सब लोग हलचल मच गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। तो फिर क्या हुआ है मैया, उना माता जी को मिलने आया हूँ, तुरंत जाऊँगा। ठीक है, दो तीन हम लोग थोड़ा पीछे पीछे गए, उनके पांचवें माले पे गए, यमुना माता जी को मिलने के लिए अंदर चले गए और उनका बहुत देर तक मीटिंग चलता रहा। तो हमारी मीटिंग हुई, अरे प्रभु जी महाराज आ गए हैं, तो पूछे क्या उनको बता दें उनको इसके बारे में। मैंने कहा बताने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो ना बोलेंगे और क्या है, लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है, वी कैन ऑलवेज एक्सप्लेन कि ये सिचुएशन ऐसा है। तो लोग बाहर वेट करते रहे, डिसीजन लेके बताना है उनको। वो पांचवें माले पे पेशेंट चौथे माले पे, तो बाहर आए उनको मिलके और हमने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे एक भक्त है, वो बचपन में आपकी गोद में एक बार बैठे थे बचपन में, और अभी भक्त भक्त बने हैं बन रहे हैं, उनको कैंसर है, जवान है, अभी मृत्यु उनके एकदम निकट है, तो बार बार वो दीक्षा के आपकी दीक्षा के बारे में कह रहे हैं, तो आप उनको मिल सकते हैं महाराज? हाँ हाँ मिल सकते हैं। तो फिर महाराज जी पांचवें माले से उतरकर चौथे माले पे आए, हम उनको उनके रूम में लेके गए। उसको दो बोतल लगी हुई थी ऐसे दो स्टैंड पे दोनों हाथ पे। जैसे महाराज आए वो बिस्तर पे लेटा था ना, तो वो बिस्तर पे लेट आते ही ऐसा दोनों हाथ लेके तुरंत महाराज के चरणों में गिर गया, बोतल वोटल लेके पूरा स्टैंड के साथ, और चरणों में गिर के रो रो के महाराज 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 हंस रहे। तो बोले क्या चाहते हो? तो रो रहा है बहुत गदगद होकर, यू नो कभी कभी ना हम लोग सोचते नहीं कि कब ये नयनम गलद अश्रु धाराया वदनम गदगद रुद्रया गिरा, कब होगा प्रभु कब होगा, सामने देख रहे हैं हो रहा है, रो रहा है गदगद होकर, कुछ बोल नहीं पा रहा है, फूट फूट कर रो रहा है, चरणों पकड़ के महाराज एक्चुअली चरणों में अश्रु चरण धो रहा है अश्रु से लिटरली। तो महाराज ने कहा क्या चाहते हो? महाराज दीक्षा दीक्षा, अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है कि सोलह माला हुआ क्या, कितने साल कर रहे हो, काउंसलर कौन है आपका, कितना मीटिंग अटेंड किया, कौन सा सेवा किया, कौन सी यात्रा में गया, हाँ सब भक्तों से मिलजुल के रहते हो कि कुछ झगड़ा वड़ा करते हो? कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। वी आर लुकिंग एट महाराज, महाराज लुकिंग एट हिम लुकिंग एट अस। तो महाराज ने बोला जाओ माला लेके आओ। तुरंत हम भागे, तुलसी की माला लेके आए, महाराज ने उसको उधर ही दीक्षा दिया, अच्युत गोविंद दास। तो अभी क्या उसका भौतिक लेवल पे क्या चांस था उसका दीक्षा का? जीरो चांस। पर दिव्य स्तर पर उस आत्मा का और गुरु का और भगवान का क्या संबंध है ये हम लोग नहीं जान सकते हैं, और हमारी भौतिक बुद्धि से कभी ये जज भी नहीं कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। अरे हमको तो 10 साल रखड़ाया क्या, हर व्यक्ति को कैंसर होना पड़ेगा क्या ये अन्याय है, यू नो ये सही नहीं है, ये वो डॉक्टर हॉस्पिटल लोगों ने कुछ बताया उनको अच्छी तरह पट्टी पढ़ाया तो मान गए वो, ऐसा नहीं है सब। ये दिव्य संबंध है। हम केवल अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग तैयार थे कि ना बोले तो भी ठीक है महाराज उसका आशीर्वाद दो बस बेचारा जा रहा है, लेकिन दिव्य कृपा कब और कैसे होगी वो तर्क दृष्टि से सही होगी लॉजिकली करेक्ट और नॉट ये विचार नहीं करना होता है। दिव्य स्तर पर जो पारलौकिक स्थिति होती है उसमें तर्क काम नहीं करता है, भौतिक तर्क जो है वो वहां फेल हो जाता है। डिवोशन लव एंड लॉजिक डोंट गो अलोंग विच इच अदर, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और जो व्यक्ति जप करता है भगवान के नाम का, वो जो आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा प्रगति करना चाहता है भगवान की सेवा करना चाहता है उसको इस बात को पक्का समझना चाहिए, जिसको ये तर्क और भगवान की भक्ति का जो विपर्यस्त संबंध है वो समझ में नहीं आता है वो छोड़ के चले जाते हैं। हमने देखा है अरे वो महाराज तो उन्हीं को ज़्यादा प्रेम देते हैं क्योंकि वो धनी आदमी का बेटा है, छोड़ गया निकल गया वो, उसको सहन नहीं हुआ वो। तो हमारा जो तर्क है हमारा जो लॉजिक है वो और दिव्य स्तर की क्रियाएं मेल नहीं खाती है वो कभी, इसलिए हमको पक्का समझना चाहिए ये जो अनुग्रह है गुरु जी का एक दिव्य घटना है, और वो किस प्रकार से वो होता है वो केवल भगवान ही जानते हैं, और हमारा कर्तव्य है वो जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट नो लॉजिकल डिस्कशन नो डिबेट, तब जाकर आपको उसका पूरा लाभ होगा, नहीं तो हम तड़पते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ हमको नहीं मिला उसको दिया, या अच्छा नहीं है अन्याय है ये मंदिर में कोई सही नियम नहीं है कुछ भी होता है ये सब सोचने का विचार चालू होता है जब हम उस एक्सेप्टेंस स्थिति में नहीं है, स्वीकार स्थिति में नहीं है हम। हरे कृष्णा। तो ध्रुव जी की दीक्षा हो रही है, सब लोग बोलिए ध्रुव महाराज की, नारद मुनि जी की। कितना आनंद का प्रसंग है। हा? एक दिव्य विभूति, दिव्य आत्मा, एक सो कॉल्ड त्रस्त जीव पर कृपा कर रहे हैं ना, वो त्रस्त है ना, पीड़ा पीड़ाग्रस्त है वो, उसके वजह से ये सही समय पर दीक्षा प्राप्त होने से 6 महीने से 6 महीने के अंतर में उनको भगवान प्राप्त हो गए। और उन्होंने उनको कहा कि मैं कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था और आपके रूप में मुझे हीरा प्राप्त हो गया। अब मुझे उन टूटे हुए कांच के टुकड़े में कोई रुचि नहीं है। क्यों आप मुझे बोल रहे हो ले लो उसको, मुझे नहीं रुचि है। इतना सारा परिवर्तन वो दिव्य दीक्षा की वजह से होता है। इतना तीव्र निश्चय के साथ निकला हुआ व्यक्ति जो है, जिस चीज के लिए निकला हुआ है वो चीज उसको टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह नजर आ रही है, एक गुरुजी की कृपा की वजह से। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, ये कृपा का जो महात्म्य है इसको समझना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए उसके ऊपर कि हम भी अगर दास सही रूप में बनते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा दिव्य परिवर्तन होगा। जिन कांच के टुकड़ों के लिए हम इतने जिंदगी इतने जन्म भाग रहे थे वो एकदम अचानक टूटे हुए कांच के टुकड़े नजर आएंगे, जिसको हमको लग रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक बार भक्तों का संग, भक्तों की सेवा और भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है तो सब चीज़ें टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह नजर आती हैं, जिसमें हमको कोई रुचि नहीं है, रुचि नहीं होगी होपफुली। हरे कृष्णा। तो आज ऐसे ही एक दिव्य मुमुक्षु और तीव्र इच्छा रखने वाले भक्ति का उत्सव है रघुनाथ दास जी गोस्वामी महाराज का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये सब जितने भी गोस्वामी हमारे हैं वो सब बड़े धनी थे। भक्ति मतलब बाहरी लौकिक दृष्टि से भक्ति के मार्ग में प्रत्यक्ष रूप में आने तक एकदम धनी थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अर्थमंत्री प्रधानमंत्री थे, रघुनाथ दास राजपुत्र थे, हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी चीफ पुजारी ऑफ श्रीरंगम उसके पुत्र थे। सब लोग अपने अपने भौतिक स्थिति में एकदम दिव्य थे, लेकिन त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छ वत, छोड़ दिया एक तुच्छ वस्तु के तरह सब छोड़ दिया उन्होंने, अपना अधिकार अपना पद हाँ अपना इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव और धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसे रघुनाथ जी कायस्थ राजा के पुत्र थे, गोवर्धन मुजुमदार, वैसे पावरफुल उनके चाचा थे हिरण्य मुजुमदार, और इतना धन था हम लोग आज के तारीख में कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या किसी को दिन में 20 लाख सोने की मोहरों का इनकम हो सकता है क्या? आज के तारीख में अगर गिनती करेंगे ना तो अंबानी में फेल हो जाएंगे उनके सामने। 20,000 गोल्ड कॉइन्स, एक गोल्ड कॉइन का कीमत क्या आज, सॉरी 20 लाख गोल्ड कॉइन्स दिन का इनकम था उनका, और उसमें से 15 लाख गोल्डन कॉइन्स स्वर्ण मोहर उनको गवर्नमेंट में जमा करना था, और 5 लाख स्वर्ण मोहर उनका दिन का डेली इनकम था। गिनते जाओ आगे कितना होता है। और एक में राजपुत्र थे, सारा उनका वंश उनका ही था इनहेरिटेंस, फिर भी उनको कोई रुचि नहीं थी उसके अंदर। जन्म से चैतन्य महाप्रभु के विचार से पागल हो गए थे वो, कई बार भाग चुके थे, फिर उनका विवाह किया गया एक अति सद्गुण संपन्न सौंदर्यवती अप्सरा के समान स्त्री के साथ उनका विवाह किया गया, वो भी उनको बांध नहीं सका। फिर एक बार शांतिपुर में वो, मैं बड़ी लंबी सुंदर कहानी मैं संक्षेप बता रहा हूँ टाइम कम है, तो एक बार शांतिपुर में वो चैतन्य महाप्रभु को भाग कर जाके मिलते हैं। शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं, महाप्रभु भी बड़े चतुर हैं, वो ऐसा आदेश देते हैं कि आप भी सुनते रह जाएंगे, ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने। लेकिन अगेन जो दिव्य व्यक्ति किसी अन्य दिव्य व्यक्ति को कुछ संदेश देता है तो उसका मतितार्थ वो समझ जाते हैं, उसका लौकिक अर्थ निकालते बैठते नहीं है कुछ। तो कहते हैं उनको कि एक एक औरत है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन शादी के बाहर उसका किसी पुरुष से प्रेम है, तो वो क्या करती है, अपना घर का कर्तव्य इतना अच्छी तरह से करती है, इतना अच्छी तरह से करती है, पति की देखभाल भी इतनी अच्छी तरह करती है कि पति को इतना सा भी संदेश नहीं संदेह नहीं आएगा मन में, क्या इसका किसी और पर प्रेम हो सकता है। फिर उसको पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद, आश्वस्त करने के बाद, फिर वो अपने जो बाहर का प्रेमी है उसको मिलने जाएगा जाएगी। बस इतना ही उन्होंने संदेश दिया। तब बोले इसमें क्या समझना है, तो समझना यही है कि मैं यानी भगवान एक पर पुरुष की तरह है और संसार जो है वो तुम्हारे कुटुंब की तरह है, संसारी जो कर्तव्य होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो इतनी अच्छी तरह से करो, इतनी अच्छी तरह से करो कि सांसारिक परिवार के लोगों को कुछ संदेह नहीं होगा कि इसका किसी और में प्रेम है, और फिर हृदय जो है वो मुझे दे देना, बाकी बुद्धि शरीर हाथ पैर जितने भी इंद्रिय कर्मेंद्रिय जननेन्द्रिय जितने भी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है वो सबसे दुनिया की सेवा करना। तो उसके पहले वो बिल्कुल रुचि लेते नहीं थे, उसके पहले हमेशा भागने में उनका प्लानिंग होता था, लेकिन जब लौट के आए तो एकदम तथाकथित नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल मतलब कैसा, एकदम धंधे में रुचि, परिवार में रुचि, सब में रुचि, लेकिन हृदय से पूर्णतः उतने ही विरक्त थे जितने पहले थे। लेकिन अभी भी चतुरता से महाप्रभु जी के आदेश का मतितार्थ समझते हुए चल रहे हैं। उन्होंने एक बीच में ऐसी घटना हुई उसमें सिद्ध भी कर लिया कि मैं कितना अभी पारिवारिक हो गया हूं। एक मोहम्मदन था चौधरी, उसने कंप्लेंट किया कि ये जो हिरण्य मुजुमदार है ना, ये 15 लाख सुवर्ण मुद्राएं गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करने के बदले में 12 लाख ही करता है और 3 लाख अपने पास रखता है एक्स्ट्रा इनकम। तो कंप्लेंट कर दिया उसने और पुलिस लेकर आ गया अटैक करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। और उस समय हिरण्य और गौरव मुजुमदार दोनों बाहर चले गए थे किसी काम से, तो रघुनाथ को अरेस्ट करता है वो जेल में डाल देते हैं और रोज गालियां बकता है उसे और रोज मारने के प्रयास करता है, होता ना जेल में मारते तो है, तो रोज उसको प्रयास करता है, लेकिन जब उसके सुंदर चेहरे को देखता है तो उसके मन में प्रेम आता है, वात्सल्य, और मार नहीं सकता है और सोचता है कि ये तो कायस्थ फैमिली का राजपुत्र है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, आगे जाकर महंगा पड़ सकता है, ये तो व्यावहारिक कारण है न मारने का, लेकिन आंतरिक कारण ये था कि उसके चेहरे में इतना निष्पाप भावना, इतना पवित्र भावना थी कि उसको देखकर उसको मारने का दिल नहीं करता। फिर बहुत दिन तक चलता रहा, लाओ लेके आओ अंकल को, अंकल को लेके आओ। तो कहते हैं देखा चाचा जी, आप और मेरे पिताजी और मेरे अंकल आप सब लोग भाई समान हो और मैं आपके बेटे समान हूँ, और भाई भाई तो कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं और बाद में तुरंत तो एक साथ खाना खाने बैठते हैं, मजाक करते हैं और फ्रेंडशिप गले मिलते हैं, वैसे ही आप लोग, आज कुछ आपका वाद विवाद हो गया है 2 दिन में मिट जाएगा, फिर आप लोग वापस भाई भाई की तरह एक साथ बैठेंगे, और अंकल मैं तो आपका बेटा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ, आपका आश्रित हूँ, और कोई व्यक्ति किसी आश्रित पर कभी मारपीट या कोई धमकाने का काम नहीं करता है, हम तो एक आपका भतीजा होने के नाते आपसे प्रेम की अपेक्षा करते हैं और आपको डरा धमका रहे हैं, ऐसा इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत सुंदर एकदम प्रेम से। तो वो मोहम्मद चौधरी जो है ना, उसका हृदय पिघल जाता है, कहता है बात तो सही है तुम्हारी, आपको देख के मुझे ऐसे बेटे का ही भाव मन में आता है, और एक काम करते हैं, अभी आपको मैं आज ही वो अर्थमंत्री से बात करके आपको रिहा कर देता हूँ, मुझे तुरंत आपके अंकल से मुलाकात कर देना और उनको कहना कि आप 3 लाख रख रहे हो, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। वो सेटल कर देंगे, जो भी वो कहेंगे आप कह देना उनको, फिर हम लोग झगड़ा मिटा देंगे, और उनको रिहा कर देते हैं। उसके बाद में तुरंत उनका मुलाकात अंकल से होती है और सेटलमेंट हो जाता है। तो गोवर्धन मुजुमदार को यह पक्का अभी अनुभूति होती है कि मेरा बेटा अभी अच्छी तरह दुनियादारी का आदमी बन गया है, जो आदेश दिया था ना अच्छी तरह सेवा करना परिवार की, वो सफल हो जाते हैं। तो उसके बाद में फिर वो भागने का प्रयास शुरू करते हैं, फिर एक बार गार्ड्स पकड़ उनको लेके आते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है उसको बांध दो, रस्सी से बांध कर रखो, तो गोवर्धन जी कहते हैं अरे जिसको इतना वैभव लुभा नहीं सका। अप्सरा जैसी सौंदर्यवती सुंदर गुण वाली पत्नी उसको आकर्षित नहीं कर सकी, इसको दुनिया की दोरी क्या बांध सकती है? जिस पर महाप्रभु चैतन्य की कृपा हो गई है उसको दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती है। छोड़ दो उसको, अभी आप चिंता मत करो उसके बारे में, जो होना है भगवान की इच्छा से होगा। तो फिर वो देवी की पूजा करने लगते हैं। एक दिन देवी की पुजारी जो है ना वो बीमार हो जाता है, वो सिक लीव लेता है। तो बोला नहीं मैं करूँगा, मुझे इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो बड़े प्रेम से देवी की सेवा करते, इतनी अच्छी सेवा करते हैं कि दिन रात ऐसे फुल टाइम लगे हैं पुजारी, 6 आरती 6 पूजा उत्थापन शयन सब कुछ। तो फिर एक गार्ड लगे हुए मंदिर में, लेकिन वो बोलते हैं इतना दिल से लगा हुआ है, अभी क्या है रात को इतने सो जाता है सब पुजारी सब शयन करते हैं और सब गार्ड सो जाते हैं, उसी रात को रघुनाथ भाग जाते हैं। उसके पहले बीच में की जो घटना है वो आज की घटना है, वो एंड है उसका, लेकिन उसके बीच में कुछ विचार करते रघुनाथ जी और कहते मुझे नित्यानंद प्रभु को मिलना है। तो उनको मिलने के लिए पानीहाटी जाते हैं। क्यों जाते हैं उधर? क्योंकि गुरु की कृपा मिले बिना भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतो भी। इसलिए वो पानीहाटी जाते हैं। और आप कहेंगे अरे तो चैतन्य महाप्रभु तो पहले मिल चुके हैं, वो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु ने उनको अनुग्रह कर दिया है, उनको आज्ञा भी दिया है, तो बात तो हो गई है उनकी। नहीं, लेकिन वो जानते थे कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, बलराम जी के अवतार हैं, उनके द्वारा कृपा होने पर ये सब सिद्ध होगा। इसलिए वो पानीहाटी पहुँचते हैं और देखते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं ऊँची जगह पर, गंगा जी के किनारे उनके साथी बैठे हुए हैं सब लोग, इतना हजारों लाखों उदित सूर्य के प्रकाश के समान उनकी आभा है और कितना प्रभाव है उनका, हजारों लाखों लोग उनके आसपास बैठे हुए हैं, दूर से प्रणाम करते हैं। तो उनके जो पार्षद होते हैं निकट पार्षद कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी रघुनाथ आए हैं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, तो इसको बुलाओ यहाँ पर। तो नहीं आते हो, दूर से प्रणाम करते हैं। तो कहते नहीं आ रहे, वो दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उठ जाते हैं और भागते उसको पकड़ते हैं और अपने चरण कमल उसके सर पे रखते हैं, जय नित्यानंद प्रभु की। कहते तू चोर है, दूर से प्रणाम करता है, मुझे इसकी सजा मिलेगी। इतने जरिए मेरे सारे भक्त आए हैं, उनकी सेवा करो, उनको दही चिड़ा का उत्सव बनाओ। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा आदेश प्राप्त करके बहुत खुश हो जाते हैं, वेरी हैप्पी। अपने सारे सेवकों को सब दुकान में भेज देते हैं और जितना भी मार्केट में जितना भी पोहा है, जितना भी दूध है, जितना भी दही है, जितना भी केला है, जितना भी जो स्पाइसेस है सब खरीद लेते हैं और ये बड़ा उत्सव संपन्न होने जाता है। तो कई प्रकार के 7 बड़े पात्र लेके आते हैं, हाँ फिर बड़े 4 और पात्र लेके आते हैं, कई हजारों छोटे छोटे पात्र लेके आते हैं मिट्टी के, और एक में पोहा दूध में भिगाते हैं और फिर बड़ी देर तक उसको दूध में भिगाने के बाद में वही पोहा, वो जो होता है ना कंडेंस मिल्क, क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ा रबड़ी जैसा होता है ना, बहुत गाढ़ा होने के बाद में उसको, तो वो जो दूध में भिगाया हुआ पोहा है वो एक बड़े साइज के पात्र में गाढ़े दूध में रबड़ी वाले दूध में भिगा देते हैं, उसके अंदर चंपा केला और बहुत सारी चीज़ डालते हैं, द्रव्य मतलब मेवा वगैरह, और एक जगह पर वो जो दूध में भिगाया हुआ पोहा है वो दही में भिगा देते हैं और बहुत सुंदर मिश्रण उसका करते हैं और करके नित्यानंद प्रभु के सामने रख देते हैं उसको। और नित्यानंद प्रभु स्नान करते हैं नदी में, गंगा जी में, और ऐसा लगता है कि सारे ग्वाल बाल नित्यानंद प्रभु बलराम जी के साथ मिलकर यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, ऐसा दिव्य वातावरण वहाँ उत्पन्न होता है। स्नान करके शुद्ध होकर अच्छी तरह से बैठकर आसन में बैठकर ऊंची जगह पर अपने 5-6 निकट के पार्षदों के साथ बैठकर नित्यानंद प्रभु को वो उनका दोनों पात्रों का भोग लगाते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं उनको कैसा भोग लगाते हैं। एक हिस्सा गरम दूध में, एक हिस्सा दही में, शक्कर में और केले में, फिर दूसरा दूध के साथ उसमें स्पेशल चंपा केला मिक्स कर देते हैं, उसमें घी डालते हैं और कपूर डालते हैं। हाँ देखिए, एक में कपूर घी और शक्कर है और दही है, एक में दूध है और केला है और शक्कर है, इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को खिला देते हैं और रामदास, गदाधर दास, मुरारी, सदाशिव, होड़ कृष्णदास, उद्धारण दत्त, ये सब उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और सब लोग फिर उसको पाने लगते हैं। और इसके बाद में सभी भक्तों को दो दो पात्र देते हैं, एक दही में भिगाया मिक्सचर, एक दूध में भिगाया मिक्सचर। और इतने लोग हैं, सब सर्वेंट जो है रघुनाथ जी के और ब्राह्मण सब मिल आते हैं ना बनाने के लिए वगैरह, कुछ ब्राह्मणों को नित्यानंद प्रभु ऊपर बिठाते हैं आदर से अपने साथ में, उनको भी खिलाते हैं और बाकी सब लोगों को दो दो पात्र देते हैं। और ये सब सुनकर सारी जनता वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और माल लगता है ना उनको, माल कम पड़ता है तो और दुकानों से माल खरीदते हैं और बाहर लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं अपना दूर का शहर का बाहर का जो दुकान है वो टेम्पररीली स्टॉल के रूप में वहाँ पे लगाते हैं, उनका भी सारा माल नित्यानंद प्रभु अपने सॉरी रघुनाथ दास खरीद लेते हैं। और उसके बाद में वो सारे दुकानदार सब माल बेचने के बाद पैसा जमा करके जेब में रखते हैं और दही चिड़ा खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। इस असली बनिया आ जाते हैं और सबको रघुनाथ दास जी बड़े प्रेम से, जिनसे अभी पैसा देकर माल लिया उनको बड़े प्रेम से दो दो पॉट देते हैं। तो लोग ऐसे जगह नहीं, उधर आप सोच सकते हैं जगह नहीं है तो दो पॉट लेकर घूम रहे इधर उधर कहाँ जाएं, तो पेड़ के नीचे इधर उधर नीचे नदी किनारे सब जगह फैल जाते हैं और भी लोग आते हैं तो क्या करेंगे, दोनों पात्र लेकर नदी के अंदर घुस जाते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग, जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ सुनता हूँ मुझे इतना आनंद आता है। ऐसा उत्साह होना चाहिए भक्ति में, है ना, कि तो ऐसे भाई पानी में खड़े रहेंगे तो आप पानी में खड़े रहेंगे ना, तो अब पानी आप बोलेंगे नहीं मुझे 2 फुट पानी के अंदर जगह चाहिए, आगे जगह नहीं तो भी थोड़ी ऐसा गर्दी में होता है, तो 2 फुट 4 फुट 6 फुट कमर तक छाती तक सब जा रहे हैं पानी के अंदर, ऐसा हाथ में ऐसा ऐसा खा रहे हैं इतना आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इसके केंद्र स्थान में कौन है, नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, उनके आदेश से उत्सव मनाया जा रहा है। और वो आदेश का क्या प्रिंसिपल है कि सब भक्तों को संतुष्ट करो रघुनाथ, सब भक्तों को संतुष्ट करो, जब सब वैष्णव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा के प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाओगे। वो समझ जाते हैं, इसी का सार यही है, उसी भाव से वो बड़े प्रेम से सबको दही चीला खिलाते, भक्त लोग बड़े चाव से खाते हैं, चाट चाट के खाते हैं और उनको दिया जाता है, सब लोग बांट रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। उतने में उनको मूड आता है कि अभी महाप्रभु चैतन्य को आह्वान करना चाहिए, तो महाप्रभु चैतन्य को भाव से आह्वान करते हैं, महाप्रभु चैतन्य अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं, केवल कुछ कुछ लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सब लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लोग सोच रहे कि नित्यानंद प्रभु तो पागल हो गए, अभी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, हवा में किसी को खिला रहे हैं और हवा में से किसी का स्वीकार कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल गए अभी काम से। कई देर तक, बहुत देर तक, हाँ वो सभा के अंदर बीच में वो गोल 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 घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं और वो महाप्रभु जी उनको अपने हाथ से खिला रहे हैं, वो उनके पात्र से निकाल के फिर इनके पात्र से निकाल के वो उनको खिला रहे हैं। और लोगों को क्या लग रहा है, एक ही व्यक्ति कुछ ड्रामा हो रहा है ना। उसके बाद में वो जो पात्र का महाप्रसाद है उनको फिर महाप्रभु जी को बिठाते हैं वो अपने बाजू में और फिर ढंग से उनको सब खिलाते हैं, ब्राह्मण भी आकर उनको खिलाते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता किसी को, एक प्लेट है वो खाली होते जा रहे हैं, फिर कुछ सामान व्यंजन दिया जा रहा है और वो खाली होते जा रहा है। इट्स अमेजिंग थिंग राइट, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कौन है यहाँ पर, कौन बैठा है इधर कौन खा रहा है इसको, सब लोग आनंद ले रहे हैं दिव्य प्रसंग का। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु राघव पंडित वहाँ से आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्या लीला हो रही है यहाँ पर। वो कहते हैं अरे नित्यानंद प्रभु आपके लिए मैंने घर में प्रसाद बनाया है, आपका मेरे साथ एंगेजमेंट था आज, इतना सारा व्यंजन भगवान को अर्पण करके मैंने वहाँ पर रखा है, कोई स्पर्श भी नहीं हुआ उसका, कभी आएंगे वहाँ पर, तो मैं तो ग्वाला हूँ, मुझे जमुना किनारे अपने मित्रों के साथ बैठकर नदी में स्नान करने के बाद भोजन करने को बड़ा आनंद आता है, आई लव दिस पिकनिक, आपके घर में शाम के आऊँगा डोंट वरी। तो फिर भी वो घी में बनाए हुए कुछ व्यंजन वहाँ पर आके परोसते हैं, वो भी वो खा लेते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु के बचे हुए जो दही चिड़ा के प्रसाद है वो सबको दोबारा वितरण किया जाता है। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास जी बड़ा प्रसन्न कर लेते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं उनका। और शाम को नित्यानंद प्रभु फिर राघव पंडित के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर भी रघुनाथ दास जी को नित्यानंद प्रभु बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं। ये जो भाव है भक्तों का ना, कैसे हमारे भगवान जो है अपने भक्तों के अंदर भाव रखते हैं। भगवान का अपने भक्तों में भाव रहता है बहुत, जैसे कोई माता का अपने पुत्र पर रहता है ना। जब अभी 3 साल का पुत्र है और वो मम्मी ने भिंडी की सब्जी बनाने का तय किया है और वो एक भिंडी बच्चा काट के मम्मी को देता है, बाकी सैकड़ों भिंडी तो मम्मी ही काट लेती है, लेकिन आज मेरे पुत्र ने एक भिंडी मुझे बढ़िया तरीके से काट कर दिया, सब्जी में मैंने इस्तेमाल किया, वो 50 लोगों को जाके बताएगी। इसको क्या कहते हैं? कौतुक। खूब कौतुक स्थाइल अपने मुलाबद्दल है ना, ऐसा किया आज मेरे को उन्होंने वहाँ पर ला के दिया, टॉवेल ला के दिया, ऐसे छोटी छोटी बातें, एकदम इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। बट एक पुत्र जब करता है तो माता पिताओं को कितना कौतुक होता है उसका, कि मेरे पुत्र ने मेरे लिए आज ये किया, इतना सा नन्ना सा बालक है मेरा। वैसा ही भाव भगवान का अपने भक्त के प्रति होता है, वात्सल्य और प्रेम की वजह से। जरा सा थोड़ा वो कुछ कर लिया तो भगवान को अपने भक्त पर इतना गर्व होता है, इतना कौतुक होता है उसका, इतना अप्रिसिएशन देते हैं उसको। ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको भक्ति मार्ग में भगवान की और भक्तों की सेवा करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को आपकी द्वारा की गई छोटी छोटी सेवाओं को प्रति बहुत कुतूहल है, बहुत कौतुक है उनको आपके प्रति। जब हम छोटी छोटी सेवा करते हैं, भगवान बड़े ही सराहते हुए बताते हैं, देखो देखो मेरे भक्त ने कितना बढ़िया सेवा किया। तो वही भाव नित्यानंद प्रभु का रघुनाथ दास के प्रति है, इतना प्रेम से उनको कह रहे हैं मैं दंड दूंगा आपको, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपने चरण उसके सर पे रख रहे हैं। हाँ, नितय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, वो चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए सब तरसते हैं। और नित्यानंद प्रभु अपने आसन से उठकर भाग कर पकड़ कर उसके चरण पे सर पे चरण रख रहे अपने, उसका जीवन तो धन्य हो गया। ये प्रसंग है, और ऐसी कृपा प्राप्त करके वो सारा दही चिड़ा सबको हृदय भर के बांट कर सबको प्रसन्न कर लेते हो, और उस कृपा के माध्यम से वो कृपा बटोरने के बाद फिर घर लौट जाते हैं। और फिर इसके बाद देवी के पूजा के बहाने एक दिन रात को भाग जाते हैं जंगल के रास्ते से, कांटों से कटते हुए, हाँ इतनी रातों को भूखा रहते हुए भाग जाते हैं, और जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। फिर पहले तो थोड़ा ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, कंबल अम्बल पहन के आते हैं प्योर, लेकिन एक एक करके सब छोड़ देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं अभी क्या कर रहे हैं, बोलते हैं अभी लास्ट में वो जो गौशाला की गायें हैं ना, वो एक जगह पर सब लोग ने खा खा कर फेंका हुआ जो सड़ा हुआ प्रसाद है वो गाय खाती है, और गाय भी कुछ कुछ हिस्सा नहीं खा सकती है, वो इतना सड़ा होता है, तो जो गाय भी त्याग करती है वो खा रहा है अभी वो। महाप्रभु स्वयं कहते हैं और चैतन्य चरितामृत कार भी कहते हैं कि रघुनाथ दास जी का जो वैराग्य है उसकी कोई भी तुलना नहीं, नकल नहीं करना चाहिए, मर जाएगा वो व्यक्ति अगर रघुनाथ दास जी का वैराग्य का अगर नकल करने लगेगा, झूठ झूठ भी करेगा तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन गोस्वामी की नम्रता, रघुनाथ दास जी का वैराग्य, कोई नकल नहीं कर सकता। तो महाप्रभु वहां पहुंच जाते हैं रघुनाथ की जगह पर, जहां पर वो गाय के द्वारा त्याग किया हुआ अन्न खा रहे हैं, और वो खाने लगते हैं उसके हाथ से छीनकर, बोलते दुनिया का सबसे बड़ा स्वादिष्ट अमृतमय श्रेष्ठतम प्रसाद तुम पा रहे हो और मुझसे छोड़कर अकेले खा रहे हो। बोले नहीं नहीं महाप्रभु, नहीं नहीं ये आपके योग्य नहीं है, ये तो बहुत ही ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं महाप्रभु उसके हाथ से छीन के खाते हैं उसको, बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, रघुनाथ को गले लगाते हैं। तो भगवान जो है ना वो अपने भक्तों का हृदय का भाव जो उसको बराबर समझते हैं, इसलिए भक्ति का जो सारा जीवन है हमारा वो हृदय के स्तर पर है। क्या कथा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा मंदिर बनाया, कितना किताब वितरण किया, ये भी जरूरी है सब कुछ, लेकिन ये सब के पीछे जो हृदय का भाव है वही भगवान को भाता है, वही भगवान को अच्छा लगता है, वही भगवान को आकर्षित करता है, और वही भगवान को प्रेरित करता है भक्त के प्रति। और ये सारे जो गोस्वामी हमारे हैं ये सभी इसी प्रकार के कार्य करते हुए भगवान को आकर्षित करते हैं अपने हृदय के भाव से। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते हैं रूप गोस्वामी को, बस बस अभी आप और नम्र मत बनना, प्लीज छाड़, क्या वो श्लोक है बंगाली में, प्लीज गिव अप दिस ह्यूमिलिटी, मुझे अभी सहन नहीं हो रहा है आपका, आपका ये दैन्य जो है, दांत में तृण पकड़ के आप जो दैन्य प्रकट कर रहे हैं, मुझे सहन नहीं हो रहा है, बस बस अभी बस करो, राम के लिए मैं कह रहे हैं, दोनों दांत में तृण लेकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनको। तो ये जो भाव की बातें है ना, ये भगवान के लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, भगवान इस भाव के लिए बिखे हुए हैं। तो ये आज का मुझे कहना आपको यही है कि कितना भाव भगवान अपने भक्त में रखते हैं, जितना हम भी भगवान में रखते नहीं है। जैसे एक पुत्र जो होता है वो कितना भाव माता पिता में रखेगा, वो तो डिमांड करता है उनसे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन माता पिता का जो पुत्र में भाव होता है उसकी समझना मुश्किल है, तुलना करना भी मुश्किल है। वैसे हम कितना करेंगे भगवान के लिए, हमको तो भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, भगवान का दुखों का निवारण चाहिए, हमारा ये भाव है। लेकिन भगवान निरपेक्ष भाव से अपने भक्त पर प्रेम करते हैं, और वो भाव जो है वो पकड़ना बहुत जरूरी है। जब उस भाव को हम पकड़ सकते हैं, पकड़ लेते हैं, तो भगवान कोई दूर नहीं है, भगवान बड़े निकट है हृदय के अंदर। भाव जब पैदा होता है निरपेक्ष भगवान के प्रति, तो भगवान हमारे हो जाते हैं। पूरा चैतन्य चरितामृत भाव से भरा हुआ है, अत्युत्कृष्ट अत्युत्कृष्ट अति उत्कट प्रेम भावनाओं का प्रकट्य है चैतन्य चरितामृत में। एक एक भक्त का प्रेम, हाँ, अलग अलग रसों में। एक जगदानंद पंडित है, उनका सत्यभामा का भाव है, बाकी सब लोग अपने अपने भाव में हैं, और ऐसा दिव्य भाव जब प्रकट करते, भगवान स्वयं पागल हो जाते हैं उनके भाव को देखकर, भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के समय हुए, जैसे सनातन गोस्वामी के प्रसंग में हुए, जितने भी इंटरेक्शन उनके होते हैं भगवान के जगन्नाथपुरी में और आगे, सब जगह पर यही भाव का जो आदान प्रदान है उसकी उत्कटता प्रकट हुई है। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि हमारी दीक्षा के माध्यम से हम इन दिव्य व्यक्तियों से संबंधित है, हमारा हमारा संबंध जुड़ा हुआ है उनसे, वी आर कनेक्टेड टू रघुनाथ गोस्वामी, हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, वी आर कनेक्टेड टू ऑल दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज। बस भाव समझना जरूरी है, जब भाव समझ में आएगा तो भगवान और सारे भक्त हमारे पास में हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जब दही चिड़ा का उत्सव होगा शायद आपके यहाँ पे, कल है, जब दही चिड़ा आप खाएंगे तो कृपा करके इस भाव को अनुभव कीजिए। हाँ, आज हम दही चिड़ा बनाएंगे, शायद हम मैंगो डालेंगे उसके अंदर, केला डालेंगे, शायद चंपा केला नहीं मिलेगा उस टाइप का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कथा को, लीला को याद करते हुए उसको बनाइए, और नित्यानंद प्रभु को बड़े प्रेम से अर्पण कीजिए, और उसको पाते वक्त रघुनाथ दास जी का ध्यान कीजिए कि क्या भाव था उनका। हजारों लाखों भक्तों को प्रदान करने के बाद में लास्ट में जबरदस्ती रघुनाथ को बिठाया जाता है, बोलो तुम भी खाओ, उसको खिलाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। और किस भाव से खाते हैं, ये सारे भक्तों का महाप्रसाद है, सब भक्तों की संतुष्टि की कृपा उसके अंदर सम्मिलित है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के भाव का उत्सव है। हाँ, दही चिड़ा तो उसका एक बाहरी प्रकटीकरण है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, लेकिन उत्सव रघुनाथ जी के भाव का है। उस भाव से आप उसको मनाइए, और उस भाव से जब आप वो दही चिड़ा खाएंगे तो रघुनाथ जी को जो अनुभव हुआ था वो आपको भी होगा। हरे कृष्णा। बहुत देर हो चुकी है, कोई प्रश्न लेना है क्या? किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं आपके अधिकारियों की परमिशन से। Anybody? हरे कृष्णा। एक खुशखबरी है सबके लिए, मुंडवा पासपोर्ट ऑफिस जो है ना पुणे का मुंडवा, उधर एक अस्पताल है गंगा नर्सिंग होम, उसमें हमारे कैंप के मंदिर के डिवोटीज बीमार पड़ने पर ट्रीटमेंट लेने के लिए जाया करते थे। और भक्त लोग बीमार होंगे तो क्या हुआ, शेर बीमार होने पर भी शेर होता है। तो भक्त लोग बीमार है, टाइफाइड से कभी कभी, क्या कहते हैं उसको, मलेरिया से है, बहुत सख्त मलेरिया। एक बार किसी 35 लोग को मलेरिया, एक बार 38 लोग को टाइफाइड, ऐसा होलसेल में काम होता है। तो फिर वो इनका इलाज करते करते गले करते करते वो दोनों डॉक्टर भक्त बन गए। और फिर हमारे डॉक्टरों के मीटिंग में आए एक बार, हमारा एक सभा है पूरा महाराष्ट्र का, उस सभा में मिलने आए और उनको ऐसा मन में प्रेरणा हुई कि हमारा अस्पताल हमने 30 साल तक चलाया, अभी हमको उसको भक्ति वेदांत अस्पताल बनाना है। हमने कहा ऐसे तो भाव के तरंग तो कई उठते हैं, पता नहीं कितनी गंभीरता है उसके अंदर, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार बाद में मीटिंग में आके फिर उन्होंने बोला नो वी वॉन्ट टू मेक इट भक्ति वेदांत। हम बोला भाई गंभीर बात है, चलो ठीक है। अगस्त में हम लोग गए मुंडवा में, उनका विजिट किया और वो अगस्त से हमारा काम शुरू हुआ, प्रयास हमारा, तैयारियां। और कल के दिन 19 जून को रविवार के दिन डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर का उस अस्पताल में उद्घाटन हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब भी वहाँ पर 24 घंटे प्रभुपाद की आवाज़ में हरिनाम की धुन चलेगी 24/7। सब भगवान के चित्रपट जैसे आपके मंदिर में लगाए हैं वैसे लगाए गए हैं। फिर उसमें मरीजों को के लिए बेड साइड स्पिरिचुअल केयर दिया जाएगा, शिक्षाष्टकम प्रार्थना हॉस्पिटल में गाई जाएगी, हॉस्पिटल का जो हमारा आध्यात्मिक व्यवहार है ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण संहिता है, वो पालन की जाएगी। मरीजों के लिए एक महीने में एक बार प्रोग्राम किया जाएगा, स्टाफ के लिए हफ्ते में एक बार प्रोग्राम किया जाएगा, संध्या जागृति, मरीजों के लिए प्रेमांजलि, और मरीजों को और डॉक्टरों को और स्टाफ को मिलकर यात्रा निकाली जाएगी या भक्ति विधान की यात्रा में सम्मिलित किया जाएगा। और जो लास्ट स्टेज में है, अगर समझो मरने की स्थिति में है, तो उनको एंड ऑफ लाइफ केयर भी दिया जाएगा। इस प्रकार से कई प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम अभी अस्पताल में शुरू हो जाएंगे। तो उसका उद्घाटन कल हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु की उपस्थिति में, प्रमुख उपस्थिति में कल ये मुंडवा में संपन्न होगा। अरे आप सब लोगों को क्यों बता रहे हैं सब ये, शायद आप सबको आमंत्रण नहीं भी दिया होगा, लेकिन आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आप सबका आशीर्वाद हमको चाहिए, क्योंकि पुणे में सबसे पहली बार ये हमारा अभियान अभी सफल रूप से कल प्रकट होने वाला है, और उसको आगे सफलता से चलाने के लिए भक्तों का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग बड़े दयालु हों, भक्त लोग दयालु होते हैं। आप सब लोग राधा वृंदावन चंद्र जी को, गौर निताई जी को, जगन्नाथ जी को, सबको प्रणाम कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये जो आध्यात्मिक विभाग, आध्यात्मिक सेवाएं अस्पताल में करने का जो प्रकल्प है, मिशन है, ये बहुत ही पावरफुल मिशन है। इससे पूरे वैद्यकीय क्षेत्र का जो भाव है बदल सकता है एक उदाहरण के तौर पर। तो ये एक उदाहरण हम लोग वहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आगे जाकर वहाँ 50 बेड का और अस्पताल बनेगा, 80 बेड का अस्पताल हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक आदर्श बनेगा वो बाकी सारे अस्पतालों के लिए कि कैसे शुद्ध, हाँ, कैसे शुद्ध स्तर पर मेडिकल प्रैक्टिस की जाती है और कैसे मेडिकल प्रैक्टिस के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसका एक ये प्रयत्न है, हमारा प्रकल्प है। तो आप लोग कृपा करके कल के कार्यक्रम के लिए और आगे के सेवा के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा।